کسی کو دینا
جی جی
ہو سکے بزنس میں مطلب ساری جگہوں میں پیچھے دنوں کے ساتھ جتنی لگ رہی ہیں اتنی جل رہی
پل پل ہماری وپدا ہے آئی کون سی وپدا آئی ہے کون سی وپدا آئی ہے مایا کی وپدا کیوں مار تو پکار آ رہی ہے سیتا کے ہردے سے کیا ہو گیا کیوں یہ پکار آ رہی ہے وپدا آئی ہے بھاری وپدا آئی ہے کچھ تو ہوا ہے کوئی تو بھول ہوئی ہے وہ کون سی بھول ہوئی ہے اس کی ہم چرچا کریں گے پر اس سے پہلے کہ ہم وہ چرچا کریں ایک دوسری کہانی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو شاید سبھی جانتے ہیں سبھی نے شاید بچپن میں سنا ہوگا ایک ٹوپی بیچنے والا ویکتی کبھی کسی زمرد سے گزرتا تھا اور تھک گیا تھا اس لیے ایک جھاڑ کے کنارے بیٹھا اور وہاں پر آرام کرنے لگا. اس جھاڑ میں بہت سارے بندر تھے تو ان بندروں نے آ کر ایک ایک کر ساری ٹوپیاں لے لی اور پہن لی. جب وہ ویکتی اٹھا تو اس نے دیکھا سبھی بندروں نے ٹوپیاں پہن لی ہے. تو اس نے کیا 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 اس نے اپنی ٹوپی اٹھا کر نیچے پٹک دی. تو سبھی بندروں نے بھی کیا کر دیا اپنی ٹوپی اٹھا کے نیچے پٹک دی. یہ کہانی سب نے سنی ہے پر کہانی آگے بڑھی. وہ تو چلا گیا اس کی مرتیو ہو گئی. اس کا بیٹا بھی ٹوپی بیچنے والا بنا اور وہ بھی ایک دن اسی جنگل سے گزرتا تھا. وہ بھی تھکا تھا اور تھک کے اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا. آرام کرنے لگا. پھر سے سارے بندر آئے اور سب نے ایک ایک ٹوپی لی اور پہن لی اور جھاڑ پر بیٹھے تھے. وہ جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ساری ٹوپیاں گئے تھے. تو اسے اپنے ہی باپ کی بات یاد آئی. تو اس نے کیا کیا اپنی ٹوپی اٹھا کر نیچے پٹک دی. تو بندروں نے کیا کیا بندر ایک بندر آیا اور اس کی ٹوپی اٹھا کر بھی اوپر چلا گیا کیونکہ بندر بھی اپنے باپ دادا سے سیکھے ہوئے تھے. ایک بار تم نے دھوکہ دے دیا پرندو انہوں نے بھی اپنی چال یوجنا بدل دی. ہر بار ایک ہی چال سے ہرا نہیں سکو گے اور ویکت مہاواکیہ ہے بابا کی بی اے کا پیپر ایم اے میں آئے گا. جب گیان میں نئے آئے تھے بہت پیپر آئے تھے اور سبھی پیپرز کا سامنا بہت امنگ اتساہ اور دڑتا سے کیا تھا. پیپر کو پار کیا آگے بڑھے. کئی سال گزر گئے اور سوچا اب تو اس پہ ہم وجئی ہیں. پرنتو وہی مایا پھر سے ایک نئے روپ میں سامنے آئی. بی اے ہو چکا تھا اب ایم اے کر رہے تھے. بی اے کا پیپر ایم اے میں آئے گا. مایا اپنا روپ بدلتی ہے. पल पल है भारी, विपदा है आई, राम को पुकार रही है सीता, क्या उसने ऐसा कर दिया, कौन सी गलती उससे हो गई, कुछ तो हुआ, तभी तो रावण उठाकर ले गया। इसलिए कबीर ने कहा है, माया महाठगनी हम जाने, ठगती है, उसके षड्यंत्र और उसकी चाले ऐसी है कि आत्मा समझ ही नहीं पाती। एक बहन हमारे पास आई थी, कह रही थी इतनी अशांति है, कैसे कोर्स कराए आत्माओं को, हम खुद ही अशांत हैं, कभी कभी शर्म आती है कोर्स कराने में, अंतर्द्वंद इतना अधिक है, समझ नहीं आता है क्या करें। जरूर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी गहरे तलों में श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। सीता का अपहरण हुआ क्यों? क्यों रावण उसे उठाकर ले गया? उसके सात कारण और उसका विस्तार आज इस क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहला कारण आकर्षण, सबसे पहला कारण है आकर्षण। स्वर्णिम मृग को देखा और आकर्षण हुआ, अट्रैक्शन हुआ। राम जहां पर है, जिसमें परम सौंदर्य है, उसके होते हुए भी आकर्षण। संसार की वस्तु, संसार के व्यक्ति किसी देहधारी में सुबह की मुरली, किसी भी देहधारी पर बलिहार न जाओ, किसी भी देहधारी में आसक्ति ना हो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो, किसी भी स्थूल वस्तु को भी याद नहीं करो, यदि याद करोगे तो दुर्गति को पाओगे। शास्त्रों में कहानी है एक राजा की। राजा एक दिन वन में जाता है और रास्ता भटक जाता है। एक राजकुमार किसी दूसरे राज्य में पहुंच जाता है, वहां का राजा उसका स्वागत करता है, कहता है मेरे महल में कुछ दिन रहो। वो वहां रहता है और वहां वो एक दिन वहां की राजकन्या को देखता है और उसका सौंदर्य देखकर उसके मन में आता है कि मैं इसके साथ विवाह करूं। और वो उस राजकन्या के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे विवाह करना है, परंतु वो राजकन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, ब्रह्मज्ञानी थी। वो कहती है मैं तुमसे विवाह करूंगी परंतु आज नहीं, 15 दिन के बाद। राजा बहुत खुश हो जाता है, वो राजकुमार अपने मन में रंगीन स्वप्न लेकर लौटता है अपने राजधानी में। स्वप्न देखता है रोज उसका विवाह हो रहा है। 15 दिन कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तब तक वो जो राजकुमारी होती है वो लैक्सिटिव्स, जिसको मेडिकल भाषा में कहते हैं, ऐसी दवाइयां जमा लौटा कि जिससे दस्त हो जाए, लूज मोशन, इतना सेवन करती है, इतना सेवन करती है, और उसको जो भी लूज मोशन होता है वो सारा स्टूल सैंपल अलग अलग रंगीन थैलियों में भरकर रखती है एक कमरे में, और 15 दिन में वो ऐसी हो जाती है जैसे केवल हड्डियां बची है। इतनी कमजोर, दुर्बल और बीमार। और वो राजा बहुत ही, वो राजकुमार बहुत ही खुशी खुशी से 15 दिन के बाद लौटता है कि अब मैं राजकुमारी से विवाह करूंगा। राजमहल पहुंचता है और दासी से पूछता है राजकुमारी कहाँ है। दासी ले जाती और कहती है ये है यहाँ। उसे धक्का बैठता है कि ये कौन है, केवल हड्डियां और मांस, हड्डियां है केवल। राजकुमारी से कहता है क्या ये आप ही हो। वो कहती है मैं ही। पर रहा मेरे सौंदर्य का प्रश्न तो वो बाजू के कमरे में रखा हुआ है, जाकर देख लो। राजा देखता है और उसे ऐसा जबरदस्त झटका लगता है। राजकुमारी कहती है क्या इसी से प्यार था ना तुमको, इस देह से, इस चमड़ी से, इस सौंदर्य से। देख लो, परम वैराग्य उदय होता है उस राजकुमार के हृदय में। राजकुमारी शिक्षक बनती है, उसके चरणों में नतमस्तक होता है और संन्यास दे लेता है। कैसा वैराग उसमें होगा। कोई आकर्षण नहीं किसी देहधारी का, आकर्षण दोनों ही तरफ से होता है, इधर और उधर, एक तरफा नहीं हो सकता। जरूर इधर से भी कुछ कदम बढ़े तो ही इतनी हिम्मत उधर से आई है कदम बढ़ाने की। इस देह पर किसी भी देहधारी का अधिकार न है और न हो सकता है। विनोबा भावे एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक स्त्री वहां बैठी थी जिसने गजरा पहन रखा था। गजरा पता है पीछे पहनते हैं माताएं बहनें। उन्होंने पूछा क्या ये गजरा तुमको दिखाई देता है। उसने कहा नहीं। तो क्यों पहना। क्यों पहना है, दूसरों को दिखाने के लिए। हमारे चलन, हमारा व्यवहार, हमारा रूप ऐसा हो कि उसमें कोई भी आकर्षित न हो। यदि हो रहा है तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं त्यौहार हमें ही है। नहीं तो किसी स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। सीता ने मृग को देखा और उसे आकर्षण हुआ। क्या उसे ये पता नहीं कि ऐसा कोई मृग होता ही नहीं। शायद पता नहीं था, फिर भी ज्ञान था, फिर भी पता है, मुरलियों के वाक्य सुने हैं, फिर भी क्या इसलिए कि वो कुछ मदद करता है, क्या इसलिए कि वो धन का सहयोग देता है, क्या इसलिए कि वो बहुत बड़ा सहयोगी है यज्ञ का, सेंटर का, सेवाओं का। नहीं चाहिए ऐसा सहयोग। झोपड़ी रहेगी तो चलेगा, भिखारी का सहयोग नहीं चाहिए। जगदीश भाई ने कहा है, सेंटर की दीवार किसी भी भिखारी की दीवार को टच न करे, और किसी भी भिखारी का एक पाई पैसा भी यहां न लगे। धन चला जाए चलेगा, सहयोगी असहयोगी हो जाए चलेगा, परंतु वो कारण न बन जाए हमारे आसक्ति का, आकर्षण का, डिपेंडेंस का, अधीनता का, लास्ट संडे की मुरली संपूर्ण निराधार हो जाओ, क्योंकि यही अधीनता खींचकर घसीटकर गड्ढे में गिराएगी। सीता ने देखा और आकर्षण हुआ, क्या करना चाहिए था फिर से? अपने विवेक का प्रयोग। इस संसार में एक से अधिक परमात्मा से सुंदर न कोई था, न है, न रहेगा। उसको जीवन दिया है तो वहां कोई नहीं आ सकता, सूक्ष्म में भी नहीं, चाहे कोई भी हो। अपने हर आकर्षण को वैराग्य की तलवार से काट दो। दूसरा, सीता को इच्छा हुई उसे पाने की, पहला आकर्षण हुआ फिर इच्छा हुई पाने की कि मुझे चाहिए, और जहां चाहिए होता है उसमें यदि कुछ बाधा आ जाए तो क्रोध जन्म लेता है। एक साधु 30 साल पहले अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़कर चला गया और सन्यासी बन गया। 30 साल तक सन्यास, 30 साल तक कथाएं की, 30 साल तक जगह जगह घूमा, अखाड़ा खोला, शिष्य बनाए, और एक दिन अचानक खबर आती है कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया है, और वो कहता है अच्छा हुआ झंझट छूटी। क्या कहता है? अच्छा हुआ, मतलब क्या? 30 साल क्या हुआ था? अभी भी थी आसक्ति मोह, शरीर पर राख लगाकर घूमने वाले साधु भी कुंभ मेला में छोटा सा आईना रखते हैं,
चप्पल उतार ले
किस लिए? राख ठीक से लगेगी नहीं वो देखने की व्यवस्था। क्या संसार की वस्तुएं आत्मा को कभी तृप्त कर सकेगी? आत्मा अनंत है और अनंत को अनंत ही तृप्त कर सकता है। संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी साधन कभी नहीं कर सकता। सब मिल जाए फिर भी अतृप्ति बनी रहेगी। इसके लिए संसार छोड़ दिया है, और उसके बाद भी यदि संसार की वस्तुएं चाहिए तो ये कैसा समर्पण है? संसार छोड़ दिया, उस दुनिया से इस किनारे आ गए, फिर भी यदि वस्तुओं में, व्यक्तियों में मोह है और आकर्षण है और उन्हें पाने की इच्छा है तो ये कैसा संन्यास है? बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासी हो, बेहद के वैरागी हो, उस दुनिया से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी नैया निकल पड़ी है, संसार वालों की नैया खड़ी है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम जा रहे हो उस पार, तुम्हारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। सीता के अपहरण में शुरुआत देखने से हुई, आकर्षण से हुई, आकर्षण ने इच्छा का रूप धारण किया, तीसरा जिद, तीसरा जिद मांगना, चाहिए कि मांग या भीख, केयर करने वाला चाहिए, अटेंशन देने वाला चाहिए, प्रेम करने वाला चाहिए। क्या परमात्मा से अधिक भी कोई देहधारी हमें प्रेम कर सकता है, हमारा ध्यान रख सकता है, हमारी केयर, हमारी पालना कर सकता है? पद छोटों को पद की इच्छा है और जो पदासीन है उन्हें किसी और बात की इच्छा है, ना तो पद, ना तो स्थान, ना तो व्यक्ति, ना तो वस्तु, कुछ भी तृप्त नहीं कर सकता, फिर भी आकर्षण, फिर भी इच्छा और फिर जिद, चाहिए अभी चाहिए। अगर नहीं मिला तो क्या? एक सेवा केंद्र की बड़े बहन हमसे कह रहे थे कि छोटी बहनों से बात करना, बात बात पे कहती है हम फिर चल जाएंगे। कुछ हुआ जा रही हम, कुछ कहा जा रही हम, जिद करना। दादी शांतामणि मधुबन में थे, कमरा देखा था उनका, किसने इतना छोटा सा, एक ही व्यक्ति निकल सकता था उसमें से। भोली दादी थी मधुबन में, बस किचन में ही बैठ के सेवा की, ज्ञान सरोवर में शायद एक बार गए बस। भगवान मूल्यों में उनको याद करता है, कैसा समर्पण था। कभी ईर्ष्या देखी दादियों में, इनको ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, वो जगत से ही परे है ईर्ष्या की। क्या हमारा भी समर्पण ऐसा है? स्वयं को देखना है, कहीं किसी में आकर्षण तो नहीं, कहीं किसी को पाने की इच्छा तो नहीं, कहीं किसी देहधारी में, किसी पुरुष में, किसी बहन में लगाव तो नहीं। मधुबन में एक बार एक दृश्य हमने देखा था, दो बहनें बैठी थी, वो उसको खिला रही थी चम्मच से और वो उसको खिला रही थी। प्यार बहुत ज्यादा होगा, वो साथ में रहे तो रहेंगे, वो साथ में चले तो चलेंगे। क्या किसी को साथ में ले जाने का मार्ग है? एकांगी पगदंडी है, एकला चादोरे है। चौथा, राम की आवाज को न पहचान पाना, मरीज की आवाज को राम की आवाज समझ ली, देहधारी की आवाज को परमात्मा की आवाज समझ ली, व्यक्तियों की आवाज में ईश्वर की श्रीमत देखना और उसके प्रभाव में आ जाना। दादी जान की हमेशा एक अनुभव सुनाती है, जब नए नए भारत में आए थे तो दादी ने एक भाई का कोर्स कराया, वो भाई बड़ा अच्छा होगा, उसका कोर्स कराया, उसने पूरा कोर्स किया। दादी ब्रह्मा बाबा के पास गई और बाबा को कहा, बाबा ये भाई बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है ये बाबा का पक्का बच्चा बनेगा। ये भाई ने पूरा कोर्स ध्यान से सुना, ये भाई बहुत ही अच्छा है, इसको लग रहा है पूरा तीर लग गया। जैसे बाबा ने कहा, तीर उसको लगाया तुम हो, आत्माएं आएंगी और जाएगी, हमें किसी में फंसना नहीं है, अटकना नहीं, आए तो ठीक जाए तो भी ठीक, उनके जाने से हम बेचैन ना हो, हम बेचैन हो रहे अर्थात आसक्ति है। हां वो दूसरी बात है, शुभ भावना है, शुभ कामना है। अभी अभी कल परसों विदेश की एक बहन मिले थे, कह रहे थे सेंटर पर ही एक भाई रहता है, बहुत अच्छा है, हर कार एक्यूरेट करता है, परंतु उसका किसी एक बहन में आ सकती है जो कि बाहर रहती है, जो कि माता है, जो ज्ञान में नहीं है, पर उन दोनों का आसक्ति बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए। सेंटर की सेवाएं करता है भाई, सब कुछ करता है, परंतु हमने उसका जॉब भी चेंज करा दिया, उसके ही ऑफिस में वो काम करती थी, बड़ी मुश्किल से बहुत हायर लेवल पर जाकर उस भाई का जॉब चेंज कराया, अभी दूसरे ऑफिस में है। फिर भी ये बहन बता रहे थे कि लगता है उसका आकर्षण उसमें अभी भी है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो फोन पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या आपने फोन देखा? देखा तो नहीं, परंतु है जरूर, होगा उन्हें तो। विधि है पहले हम अपना आकर्षण कम कर दें, उसका उससे कम होगा कि नहीं वो पता नहीं, यह है भी नहीं किसको पता, हम क्यों बेचैन हो रहे हैं, हमारा भी तो है, चाहे कितना ही दैवीय रूप उसको हम दे रहे हैं। राम की आवाज लगती है बहुत बार, श्रीमत लगती है, ब्राह्मण जीवन का एकमात्र सूत्र है श्रीमत, मन्मत और परमत को छांट लेना। ये श्रीमत, ये मन्मत, ये परमत, जिसने ये सीख लिया उसका जीवन सफल। श्रीमत क्या है? ये जो है ये मन की मत है, श्रीमत नहीं। ये जो बोल रहा है व्यक्ति, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, इतना ज्ञानी है, परंतु शायद उस समय परवश है, इसलिए भास रहा है कि भगवान की आवाज है। और उस श्रीमत को समझने के लिए ज्ञान की कितनी गहराई चाहिए, नहीं तो हम भी उसी सीता की तरह समझ लेंगे, ये जो पुकार हो रही है उसे इतना भी नहीं पता कि क्या राम ऐसा कभी पुकारेगा। मुगले में सब कुछ है, फिर भी कभी कभी कंफ्यूजन। अगला पॉइंट, अविश्वास, राम पर अविश्वास, राम पर निश्चय ही कमी, यदि राम की आवाज हो भी तो क्या राम इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो स्वयं की रक्षा खुद करे। भगवान ने करी अविश्वास, आए थे तो क्या उमंगे थी, इतना उतार चढ़ाव देखा इस जीवन में कि कभी कभी लगता है पता नहीं बाबा है भी या नहीं। पिछले संडे की मुरली कुमारों से मुलाकात, चाहे सारी दुनिया एक तरफ, पक्ष योनि सेना एक तरफ हो और तुम एक तरफ हो, तो भी क्या कहोगे कि हमारे साथ भगवान है। सारी दुनिया ही साथ छोड़ दे तो क्या भगवान के ऊपर विश्वास रहेगा या कम हो जाएगा। बाइबल में एक उदाहरण है, जीसस क्राइस्ट को पकड़कर ले जाते हैं, उसके वो जो एक शिष्य जो धोखा देता है जुड़ास, वो दूसरे लोगों को लेके आता है, 30 रुपए में बेच देता है जीसस को, और वो लोग उसे पकड़ने ले जाते हैं, पकड़कर ले जाते हैं उस किले के अंदर। उसके पीछे पीछे उसका एक शिष्य भी आता है जो कि हमेशा कहता रहता है कि जीसस आई लव यू द मोस्ट, मैं तुमसे सबसे अधिक प्यार करता हूं सभी शिष्यों में, पीटर नाम का एक शिष्य। और उसी के लिए जीसस ने एक भविष्यवाणी की थी कि एक समय आएगा तुम मुझे इंकार कर दोगे 3 बार, वो तो मानता ही नहीं है, मैं और आपको इंकार हो ही नहीं सकता। दिखाया है कि जीसस को पकड़कर अंदर ले जाते हैं, वो पीटर भी पीछे पीछे से छुप के चला जाता है, और फिर उससे सैनिक पूछते हो क्या तुम इस व्यक्ति के साथ थे, वो कहता है कौन सा व्यक्ति है तो मुझे पता ही नहीं, पहले बार इनकार करता है। फिर से उसे दूसरे सैनिक पकड़ते हो, कहते हैं हमने तुम्हें उस व्यक्ति के साथ देखा था जीसस के साथ, वो कहता मैं तो उसको जानता भी नहीं। फिर से एक बार पकड़ते वो बोलता है मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, 3 बार इनकार कर देता है उसको, क्योंकि उसको पकड़ा गया है। अगर मैं कहता हूं कि मैं उसके साथ हूं तो मुझे भी पकड़ दिया जाएगा, ये डर। और ये वही शिष्य था जो बार बार कहता था कि मैं तुमसे सबसे अधिक प्यार करता हूं सारे शिष्यों में, वही उसको धोखा देता है। और फिर बाद में सारी उम्र पश्चाताप करता है कि क्यों ऐसा मैंने कर दिया, क्या मेरा विश्वास क्यों कम हो गया। एक दूसरा ऐसा ही उदाहरण है, गलीली की झील में जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, 12 शिष्य थे और जीसस सोया पड़ा है, वो नाव जा रही है और अचानक तूफान आता है, आंधी तूफान, पूरी नाव हिलने लगती है, पानी जहाज में आने लगता है, सारे शिष्य घबरा जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, और बहुत भयभीत होकर जीसस को उठाते, उठो देखो क्या हो रहा है। वो उठता है और आकाश की तरफ हाथ करता है और कहता है शांत, पीस, पीस स्टिल, और वो तूफान रुक जाता है। उसके बाद एक वाक्य वो बाइबल में कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, एक कम ईमान वालों, क्या इतना भी विश्वास नहीं, जिस नाव में मैं बैठा हूं क्या वो डूब सकती है, तुमने मुझे जाना है, तुमने मुझे देखा है, क्या ये भी भूल गए कि इस नैया में मैं बैठा था, और फिर भी भयभीत हो रहे हो, जिस नैया का खिवैया मैं हूं क्या वो क्यों नैया डूब सकती है, जिस नैया में हम सवार हैं उसका खिवैया भी परमात्मा है। चाहे संसार मैं कुछ भी हो, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, क्या ऐसा हमारा विश्वास है, क्या ऐसा हमारा निश्चय है उसमें, देखना है। जब से ज्ञान में आए या जीवन को अर्पण कर दिया, और अब तक कितनी घड़ियां ऐसी आई कि जिसमें भगवान के प्रति निश्चय हिलने लगा था, और वो कौन से कारण थे और क्यों हिलने लगा था वो दूसरी बात है कि बाद में फिर स्थिर हो गए, परंतु हिला तो था और क्यों हिला था। अपने सूक्ष्म चिंतन करनी है, रावण को या फिर रावण को न पहचान पाना, क्योंकि रावण किसके वेश में आया था? साधु के वेश में आया था। अगर वो रावण के वेश में आता तो पहचाना जाता, परंतु माया सफेद वस्त्र धारण करके और पैच लगाकर ही सामने आती है, उसको कैसे पहचानेंगे? वस्त्र श्वेत ही है और बैच लगा है और वही माया का रूप है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में या ब्रह्मा कुमार जीवन में ये ब्राह्मण परिवार ही एक परीक्षा गृह है, एग्जामिनेशन हॉल, और इसमें एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। इस वाक्य को हमेशा याद रखना, ये ब्राह्मण परिवार ही एक एग्जामिनेशन हॉल है और पेपर कौन है? एक एक ब्राह्मण आत्मा। कभी ना कभी तो वो पेपर बन के आएगी, चाहे कुमारी हो, कुमार हो, गृहस्थी हो, बहन हो, कोई भी हो, पेपर को पास करना होगा। और माया भी इसी परिवार में घूम रही, आशा बहन की वो बात हमको याद रहती है। कुछ बहने बैठी थी और आशा बहन ने बताया ये चित्र देखो और बताओ इसके बारे में। तो बहनों ने कहा ये चित्र में क्या है? कुंभकर्ण है, सोया हुआ है, जो कोर्स में चित्र है, ब्रह्मा कुमारी अमृत डाल रही है और दूसरे तरफ से निकल रहा है, ये चित्र तो देखा हुआ है। बहन जी ने कहा ठीक से देखो, कुंभकर्ण को पैच लगा हुआ है। कुंभकर्ण को पैच है, स्पेशल चित्र बनाया हुआ था पैच वाला। ज्ञानियों को, अज्ञानियों को ज्ञान सुनाना सहज है, परंतु ज्ञानियों को ज्ञान सुनाओ तो एलर्जिक रिएक्शन होती है, जबरदस्त होती है, नहीं होती है? इसके लिए ज्ञानियों को ज्ञान सुनाना मुश्किल है, अज्ञानियों को तो सुना सकते हैं, बेचारे सुन लेते हैं। ज्ञानियों को कैसे सुनाए? जो बाजू में हमारे ही बैठा था और मुरली चली थी तुम्हें बहुत मीठा बोलना है, और वही व्यक्ति दोपहर में व्यंगमान कटु शब्द छोड़ रहा है तीर, उसको ज्ञान सुनाएंगे कि सुबह तुम ही तो बैठे थे बाजू में? कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए और योग में सोए तो उसे बता सकते हैं, यहां नहीं बाहर सो। क्या ज्ञानियों को बताएंगे? अगर करेक्शन दी दादी जानकी कहती है तो, अगर किसी से दुश्मनी करनी है तो एक काम करो, उसको करेक्शन जाकर दो। दादी कहती है यदि किसी से दुश्मनी करनी है तो क्या करो? करेक्शन दो। मधुबन का एक भाई सुना रहा था उस दिन, किसी एक भाई को जाके कह दिया कि भाई तुमने नींद आ रही है बाहर जाओ, आज 10 दिन हो गया, आज 10 दिन तक पीछे नहीं छोड़ रहा है, इतना सा कहा था बस पीछे ही पड़ा है दत्ता लेने के लिए। मनोविंद्रा दादी क्लास करा रही थे, मेडिटेशन हॉल में सामने माताएं बैठ के सो रही थी। दादी ने कहा सब उठो और पीछे जाके खड़ी हो जाओ। तो बहन माता इतनी महारथी थी नींद में कि खड़े खड़े नींद करना चालू कर दिया। हमारे पास हॉस्पिटल में एक बहन आती है डॉक्टर, कभी कभी आती है बाहर पढ़ाई करने या जॉब कर रही है, पहले उधर थी। एक बार आई तो मधुबन में आते ही नशा चढ़ता है ना 2 बजे उठने का, तो वो भी 2 बजे बाबा की कुटिया में जाकर बैठ गई और भयंकर नींद। और फिर नींद जब करते हैं ब्राह्मण तो सबसे पहली चिंता ये होती है किसी ने देखा तो नहीं। हमको नींद आ गई सबसे पहला योग बाद में किसी ने देखा तो नहीं, तो उसको एकदम से डर लग गया कि पीछे तो लोग बैठे हुए हैं सोफा पर कुटिया में, नींद आ रही है उसको। और उसको डर लग गया कि पीछे कुछ लोग, कुछ माताएं बैठी थी, उन्होंने देखा जरूर होगा। तो उसने जरा नीचे पीछे देखने की कोशिश की, देखा 5 माताएं पांचों के पांचों सो रही है। तब कहीं जाके निश्चिंत हुई, अभी थोड़ा ठीक लगा, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो बात कर रहे थे रावण को न पहचानने की, क्योंकि रावण भेष बदल के आता है। इसलिए कबीर ने कहा है माया महाठगिनी हम जान ठगती है, पता नहीं चलने देती है, पता नहीं चलता क्योंकि इसी संबंध में माया है। पता ही नहीं चलता है कि जो ये सेवा है ये इसी माया का रूप धारण कर चुका है। सेवा तो रह गई बाजू में, कुछ और ही हो रहा है। लग रहा था सेवा हो रही है पर सेवा के साथ साथ कुछ और ही।
पकड़ के रखना, पकड़ खड़ा करके रखना।
ये जानते हैं ये जो सामने कि माया का रूप है, अगर नहीं जानोगे तो शोक वाटिका इंतजार कर, तत्पर है भारी विपदा है आई। 7वीं पॉइंट लक्ष्मण रेखा पार करना। लक्ष्मण रेखा पार करना किसी को सुख देने के लिए, किसी को सुख देने के लिए अपनी श्रीमत में कम ज्यादा करना, किसी को सुख देने के लिए श्रीमत को ताक पर रख देना, सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसॉफी ऑफ कन्वीनियंस, तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से एडजस्ट करना और फिर कहना बाबा ने कहा। सब कुछ करते हुए नाम उसका लेना ताकि वो भी एक सुरक्षा का बचे। कौन सी मर्यादाएं हैं उसका बार बार रिवाइज रिविजन होना चाहिए। सेंटर होकर भी चाहे मास में एक बार या 2 मास में एक बार सभी स्टूडेंट्स के सामने जो कि नियम बने हुए हैं बीच बीच में उन्हें पढ़ के सुनाना है, विद्यालय के जो नियम है, क्योंकि याद किसको रहता है। अगर रिवीजन ना किया जाए तो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स, भी भूल जाते हैं और हम भी भूल जाते हैं। उनको भी याद दिलाने और हम भी याद करें। एक ब्रह्मा कुमारी जीवन में क्या मर्यादा है, क्या इसके प्रति हम सजग है, कितना उसे बात करना है, कितना संपर्क बढ़ाना है, कितनी हंसी मजाक करनी है, कितना साधनों का प्रयोग करना है, कितना व्हाट्सएप में लगे रहना है और कितना व्हाट्सएप से भाइयों के साथ संबंध और संपर्क रखना है। कहीं यही माया न बन जाए। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप माया का ही एक रूप। क्योंकि हम तो यहां रहते हैं परंतु वो तो बाहर रहते हैं। क्या देखते, क्या करते, किस उस वातावरण में क्या करते, उसका क्या भरोसा। सुबह भी कहा था, दोष ना तो स्त्री का है और ना ही पुरुष का, दोष उम्र का है। आत्मा ने जन्म जन्म भोगा है, भोग के संस्कार उसमें है। अंगारी, एक चिंगारी की आवश्यकता है केवल। वो जो डिवाइन रिलेशनशिप है सेवा का, वो कब नीचे गिरते 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 रोमांटिक रिलेशन बन जाए ये भी नहीं बता सकते। वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप कब सेंशुअल और सेक्सुअल फ्रेंडशिप बन जाए ये भी नहीं बताया जा सकता। क्योंकि आकर्षण किसी नियमों को नहीं जानता, आसक्ति किसी की परवाह नहीं करती। जिस पर दिल आ गया बस वही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए डिटैचमेंट अपने संबंध में, यदि कहीं लग रहा है जरा भी लगाव हो रहा है, झुकाव हो रहा है, हटा दो उसको, इससे पहले कि वो बढ़े। और क्योंकि उसका अंत कहां होगा ये नहीं बताया जा सकता। काम की तीव्रता सबसे अधिक है। इस यज्ञ से आज तक 80 साल में जो भी आत्मा बाहर गई है एक ही कारण रहा है, अपवित्रता। या दूसरा भी कोई रहा है, बाहर से कुछ कुछ दिख रहा है, इसका झगड़ा हो गया, इसको अच्छा नहीं लग रहा, इसने ये हुआ वो हुआ, बाहर से कुछ भी कारण हो, कारण एक ही है, काम, अपवित्रता। वही कसी चले जाती है। इसलिए स्वयं को सर्व आकर्षणों से, सर्व बंधनों से मुक्त रखना। कल की अव्यक्तवाणी है, कुमारियों से मुलाकात, कुमारी अर्थात आकर्षण में ना आने वाली उड़ने वाली, ऊपर नीचे शिकारी है, नीचे पिंजरा है, शिकारी जाल लेकर खड़ा है, कोई भी हो सकता है वो। इसलिए स्वयं को अलग कर देना है, इसलिए नियम और मर्यादा है। खुद भी रिवाइज करें, दूसरों को भी रिवाइज कराए, नहीं तो वो भी भूल जाते और हम भी भूल जाते हैं। हम ना भूले परंतु वो भी यदि भूल गए तो भी हमें नीचे खींच सकते हैं। एक समर्पित भाई और एक समर्पित बहन का एक बार प्यार हो गया और दोनों ने सोचा कि हम शादी करें और भाग कर शादी की। और फिर पश्चाताप हुआ, 6 मास तक प्रकाशमणि दादी के सामने आए, माफी मांगी। क्षणिक आकर्षण था, पर उस समय वेग तीव्र था, इसलिए स्वयं को अलग कर देना सूक्ष्म से सूक्ष्म आकर्षण से, तो माया आज के युग में डिजिटल रूप है उसका, मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट, एक क्लिक और ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी, कंप्यूटर का एक क्लिक, क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, किससे कितना संपर्क है, क्या आवश्यक है, दो व्यक्तियों का संबंध केवल सेवा का, बस यदि दूसरा कुछ संबंध है उसमें शेयरिंग चालू है, आज ये हुआ मेरे साथ, आज वो हुआ, व्यक्तियों से शेयर करते रहेंगे तो धीरे धीरे परमात्मा से शेयर करना कम होने लगेगा, धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि वही व्यक्ति चाहिए, उसे सब कुछ बताना है, आज मुझे उसने ऐसा ऐसा कहा, मुझे बताना है किसी तीसरे को, जब तक ना बताऊं चैन नहीं आता, ये एक अधीनता और आसक्ति है, क्योंकि जब बड़ी परिस्थिति आएगी तो फिर वही व्यक्ति याद आएगा और कोई नहीं, सहारा एक ही हो। तो अभी हम एक ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, उसके बाद में दूसरे क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम शांति।